శాంతి. ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తక్, విశ్వ నవ నిర్మాత, ఉస్ పరమ పరపితా పరమాత్మా కే సాన్నిధ్యమే ఉపస్థిత్ ఆప్ సభీ భాయి బహనోం కా ఔర్ మంచాసీన్ వక్తా గణోం కా బహుత్ బహుత్ హార్దిక్ స్వాగత్ హై, స్వాగత్ హై, స్వాగత్ హై. ఆజ్ బడా హీ శుభ్ దిన్ హై. ఆజ్ ఇంజనీర్స్ డే కే రూప్ మే మనాయా జాతా హై. హర్ సాల్ 15 సితంబర్ కో మోక్ష గుండం విశ్వేశ్వరయ్యా జీ కే జన్మదిన్ కే ఉపలక్ష్య మే మనానే వాలే ये अभियंता दिवस पर आपको फिर से तह दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम. हमारे बीच बहुत ही अच्छे वंडरफुल स्पीकर्स पधारे हैं. मैं उनका भी करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं. कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम वक्तागणों के बैज तिलक और शाशा के साथ स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ धम्मा कुमारी बहनों का आकर के हमारे स्पीकर्स का मंच पर उपस्थित महारथियों का स्वागत करें, सत्कार करें, तालियों की गुनगुनाहट बजती रहे. आप सभी विशेष आत्माएं पधारे हैं. वर्क लाइफ बैलेंस फॉर पीक परफॉर्मेंस इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित देश विदेश के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स, आप सभी का भी फिर से स्वागत है. हम सबका मन आपके अभिनंदन और सत्कार से पुलकित है. अभी हमारे बीच उपस्थित है युग रतन भाई जी, जो गीत संगीत के मशहूर कलाकार है ब्रह्मा कुमारी संस्था का. मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अपने स्वागत गीत से, अपने शब्दों से आप सबका स्वागत करें. युग रतन भाई जी,
ओम शांति. तो आज इस सुंदर से अवसर पर जब सभी इंजीनियर्स और विश्वकर्मा, जो सभी कारीगर हैं जिन्होंने इस पूरे राष्ट्र को ही नहीं पूरे विश्व को गढ़ा है और ऐसा सुंदर रूप दिया है, उन सब के सम्मान के लिए आज का विशेष दिन है. और क्या प्रेरणा है उस परमात्मा की ओर से जो सर्वोच्च उसने विश्वकर्मा को बनाकर इस सुंदर से सतयुगी स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करा रहे हैं. तो आइए आज के इस दिन पर आप सभी का स्वागत.
विश्वकर्मा इंजीनियर बंधुओं का सम्मान करें,
विश्व हमारा घर अपना हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा इंजीनियर बंधुओं का सम्मान करें। विश्व हमारा घर अपना हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं सभी अपने लिए ही तालियों के साथ इस सम्मान में शामिल हों। इंजीनियर तो जादूगर है पल में नगर बसाते। इंजीनियर तो जादूगर है पल में नगर बसाते। सुदामा की टूटी कुटिया पर स्वर्ण महल बन जाते। सुदामा की टूटी कुटिया पर स्वर्ण महल बन जाते। स्वर्ण महल बन जाते। आओ हे इंजीनियरों, आओ हे इंजीनियरों, मन का महल तैयार करें। विश्व हमारा घर अपना हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं अपने जीवन में भी ऐसे ही मूल्यों के रंग भरे हम। आज की तस्वीर में मूल्यों का रंग भर दो। आज की तस्वीर में मूल्यों का रंग भर दो। राजयोग की कला से सबकी कायाकल्प कर दो। राजयोग की कला से सबकी कायाकल्प कर दो। कायाकल्प कर दो। आओ सभी कारीगरों, आओ सभी कारीगरों, कल का नया संसार रचें। विश्व हमारा घर अपना हम विश्व का श्रृंगार करें। इंजीनियर बंधुओं आज समय की मांग यही जनमन की यही पुकार है। आज समय की मांग यही जनमन की यही पुकार है। सबके ही सहयोग से होना अब सुखमय संसार है। सबके ही सहयोग से होना अब सुखमय संसार है। अब सुखमय संसार है। आओ प्रभु प्यारों, आओ, आओ प्रभु प्यारों, आओ सबका सपना साकार करें। विश्व हमारा घर अपना हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा इंजीनियर बंधुओं का सम्मान करें। विश्व हमारा घर अपना हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा इंजीनियर बंधुओं का सम्मान करें।
विश्व हमारा घर अपना, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्व हमारा घर अपना, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्व हमारा घर अपना, हम विश्व का श्रृंगार करें। विश्वकर्मा बंधुओं,
बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद युग्रतन भाई जी का। आज इंजीनियर्स डे के रूप में पूरे भारत देश में मनाया जाता है। ये 15 सितंबर के दिन ही क्यों इंजीनियर्स डे मनाया जाता है आप जानते हैं? ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश की परिपालना चलती थी भारत में। उस समय एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक एक ट्रेन चल रही थी और उस ट्रेन के एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीरता के साथ बैठा हुआ था, साधारण वेशभूषा में बैठा हुआ था और वहां पर उसी डिब्बे में बैठे हुए अंग्रेज उसे मूर्ख समझकर उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे थे और वो व्यक्ति सब सुनते हुए सहन करते हुए जैसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उन्होंने छोड़ दिया, उन पर ध्यान नहीं दिया। तो वो यात्री किसी की बातों में ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक वह व्यक्ति उठकर ट्रेन की चेन को खींच लिया। तेज रफ्तार से चलने वाली वह ट्रेन धीरे धीरे थोड़ी देर में ही रुक गई। सभी यात्री उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करने लगे, क्यों आपने ट्रेन की चेन खींची है। इतने ही थोड़ी देर में ट्रेन का जो गार्ड था वो भी वहां पहुंच गया और उसने पूछा, ट्रेन की चेन किसने खींची है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने खींची है। उस व्यक्ति से कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मेरा अनुमान है कि कुछ ही समय से ट्रेन की जो पटरी है वो बुकड़ी हुई है, जिस कारण से कुछ अलग सी आवाज आ रही है। गार्ड ने पूछा, आप कैसे बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा, ट्रेन की स्वाभाविक गति से कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। तो फिर गार्ड के साथ वो बाहर आकर के थोड़ी और चलने लगे तो आश्चर्यवत उस गार्ड ने देखा कि सचमुच ट्रेन की जो पटरी थी वो उकड़ी हुई थी और तब तक दूसरी यात्री भी वहां पहुंच गए। जब लोगों को पता चला, उस व्यक्ति की सूझबूझ से उनकी जान ही बच गई। तो फिर सभी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिन्होंने उनकी निंदा की वही लोग उस व्यक्ति की प्रशंसा करने लगे। तब गार्ड ने पूछा उस व्यक्ति से, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। नाम सुनते ही सभी लोग चौंक गए थे। तब तक मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की ख्याति फैली हुई थी। लोग उनसे क्षमा मांगने लगे क्योंकि उन्होंने उनकी निंदा की। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने कहा, आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी कहा वो मुझे याद ही नहीं है। यही है आधुनिक भारत के महान इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनका जन्मदिन 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म कर्नाटक में कोलार डिस्ट्रिक्ट में हुआ। 15 सितंबर 1861 में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में वो ट्यूशन पढ़ते हुए बीए पास किया और उसके बाद उनको इंजीनियरिंग पढ़ने की बहुत ही इच्छा थी, लेकिन गरीबी के कारण, पैसे ना होने के कारण उनकी लगन और मेहनत को देख करके वहाँ के मैसूर के जो सरकार थी उन्होंने उनकी पढ़ाई इंजीनियरिंग के लिए पैसे देकर उनको पुणे के साइंस कॉलेज में एडमिशन दिलाया। 1883 में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में टॉप किया। महाराष्ट्र सरकार ने उनको एक एसोसिएट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जब 32 साल के थे उन्होंने सिंधु नदी की पानी शहरों तक पहुंचने का एक सुंदर प्लान बनाया जो सभी इंजीनियर्स को बहुत ही पसंद आया। सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक नई ब्लॉक सिस्टम का उन्होंने विकसित किया जिसमें स्टील के दरवाजे बनाए गए जो बाढ़ में पानी की बहाव को रोकने में मदद करते हैं। उनकी इसी सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने भी पूरे दिल से की और आज तक भी यह सिस्टम पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और यूज किया जाता है। इसके बाद उन्होंने मैसूर के चीफ इंजीनियर बनाया गया डॉक्टर विश्वेश्वरैया को। राज्य में फैक्ट्री सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण से राज्य का विकास नहीं हो रहा था, तब उन्होंने मैसूर में कृष्णा राज सागर का निर्माण किया। 1912 में मैसूर के महाराजा ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया। उन्होंने एजुकेशन के लिए अनेक स्कूल और कॉलेजेस बनवाए। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी दिल के पक्के थे, लगनशील और एक ईमानदार इंजीनियर थे और योग्यता से संपन्न होकर कठिन परिश्रम और ज्ञान के पुजारी थे। उनकी कर्तव्य निष्ठा और योग्यता से प्रसन्न होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। सर की उपाधि से मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को सम्मानित किया, इसीलिए उनको सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया कहा जाता है। 1955 में भारत की सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया। भारत सरकार ने उनका नाम एक डाक टिकट पोस्टेज स्टैम्प भी जारी किया। इस प्रकार डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जो जिंदगी लाइफ स्टोरी अगर सुनेंगे तो उनकी देशभक्ति, उनका कर्तव्य पालन, उन्होंने जितने निर्माण उन्होंने किए, दिन रात उन्होंने मेहनत किया, इसीलिए 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय भरत भूषण भाई जी। आप सभी भरत भूषण भाई जी को जानते ही है। आप पानीपत सब जोन इंचार्ज है और वहाँ की सेवाएं में आप दिन रात तत्पर रहते हैं। आप अनुभवी मूरत तपस्वी योगी महारथी है। अपने कुशल व्यवहार और वक्तव्य से आपने अनेकों का दिल छुआ है और लाखों लोगों को आपने आध्यात्मिकता के मार्ग में अग्रसर किया है और उन्हें के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य आपने किया है। आदरणीय भ्राता भरत भूषण भाई जी, आप एक प्रतिभावान और दिव्यता की मूर्ति है। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है साइंटिस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स विंग का और आप समय प्रति समय देश विदेश में अपनी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय भरत भूषण भाई जी से हम प्रेरणादायक महावाक्य सुनेंगे, इंस्पिरेशनल वर्ड्स सुनेंगे। आदरणीय भरत भूषण भाई जी फिर से करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे।
थैंक यू सुप्रिया बहन। आज की सभा में विराजमान कार्यक्रम के चेयरपर्सन समयोगिता बहन सीनियर साइंटिस्ट और मेरे साथ बैठे हुए मधुबन के सीनियर राजयोगा टीचर ब्रदर कीर्ति जी और एग्जीक्यूटिव मेंबर और सभा में विराजमान प्रिय भाइयों बहनों इंजीनियर विंग कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी डेलीगेट्स, आज इंजीनियर डे है 15 सितंबर, उसकी आप सबको खूब 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 बधाई हो बधाई हो बधाई। कितना सुंदर बायोडाटा बहन ने उनका सुनाया जिसके बर्थडे को आज इंजीनियर डे के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर भारत रत्न सर डॉक्टर विश्वमोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, ये है नाम पूरा, तो उनके जन्म दिवस को अडॉप्ट किया गया इंजीनियर डे के रूप में। तो उनकी इतनी अचीवमेंट जो सुनाई उसके लिए भी ताली बजाओ। राष्ट्र में किसी के जन्म दिवस को इंजीनियर डे के रूप में, ऐसे एक और हस्ती हैं जिसका बर्थडे राष्ट्र में उनकी विशेषता के दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी पता होगा आप सबको, भारत के राष्ट्रपति कौन, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, उनका भी जन्म दिवस क्या था, 5 सितंबर, इसी सितंबर मास में, उसको नेशनल टीचर डे के रूप में मनाया जाता है और आज नेशनल इंजीनियर डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो खुशी की बात है, बहन ने जैसे बताया एक ऐसी हस्ती जिसने इंजीनियरिंग साइड में भी बहुत कार्य किया, मैसूर के चीफ इंजीनियर भी रहे, फिर राजनेता भी, दीवान भी रहे वहां के, तो तत्पश्चात फिर जो सबसे बड़ी देन भारत के लिए डैम्स की कंस्ट्रक्शन के द्वारा इरिगेशन करना जिससे भारत को बहुत लाभ हुआ, इसलिए उनको भारत रत्न किया जो है वो दी गई उपाधि कि इतना विशेष सहयोग रहा राष्ट्र के कार्य में। तो ये था उनकी जो विशेषता बताई। हर वर्ष इस इंजीनियर डे पे कुछ थीम भी आती है निकलकर, तो इस वर्ष का जो इंजीनियर डे का थीम है वो क्या है, वो है विशेष टेक, हाई टेक जो है, डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सेलेंस फॉर ड्राइविंग इंडियाज टेकेड, ये इसका मतलब गहरी तकनीकी और खास ये इंजीनियरिंग की एक्सेलेंस के द्वारा भारत को, भारत की टेक्निकल प्रगति, ये है मतलब भाव है कि ये इसके द्वारा, जैसे अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भिन्न भिन्न क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे कितने बढ़ता जा रहा है साइंस का, ये सब ऐसा बढ़ता जा रहा है जो शिव बाबा की बात बिल्कुल सच नजर आ रही है। क्या जिस प्रगति से बढ़ता जा रहा है लगता है कि ये सतयुग लाके छोड़ेगी साइंस इस दुनिया को, अगर इन साधनों को, इन सब शक्तियों को पॉजिटिव तरीके से यूज किया जाए तो सचमुच सतयुगी दुनिया का निर्माण होगा। तो इसलिए जो है वो एक प्रगति की ओर, लेकिन प्रगति विज्ञान की प्रगति खूब हो रही है, खूब हो रही है और होती जाएगी। कितना कभी सोचा नहीं था, एक छोटा सा देखो इंस्ट्रूमेंट हम सबकी जेब में आ जाएगा। मेरे जैसे कोई सीनियर सिटीजन पुराने बैठे होंगे, याद होगा वो दिन जब हम कहीं डाकखाने पे कहीं जाके फोन बुक करा के खड़े होके तब फोन करते थे, और लाइटनिंग कॉल बुक करा जल्दी मिलाना है तो बहुत कॉस्टली पड़ती थी। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा साधन आ जाएगा, अपना लेटे लेटे सात समुद्र पार कहीं भी आप बात करो और फ्री में करो व्हाट्सएप के द्वारा। तो कितना है, आप सोचिए कितना प्रगति की ओर चलता जा रहा है, और कितना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो कमाल ही कर दिए। हाँ, कैसे जो भी चीज आप कमांड दो आपको झट पेश करेगा, देरी नहीं लगाएगा। कितने लेटर्स बनाने में कितना टाइम ड्राफ्ट करने में लगता था, बस बोलो फट तैयार। तो ऐसे जो बढ़ता जा रहा है सारा कार्य, रोबोट क्या और क्या है सब चीजें, ऐसा लगता है ये क्यों इतना 100 वर्ष के अंदर ही इतना ज्यादा तरक्की इतनी होती जा रही है। परंतु इतनी तरक्की होने के बाद भी फिर भी अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है? आप अगर 100 वर्ष का वो भी इतिहास देखेंगे, जो पहले चरित्र था वो आज नहीं रहा है, जो पहले मेंटल स्टेबिलिटी पीस ऑफ माइंड था वो नहीं रहा है, और नीचे उतरता आ रहा है मनुष्य, उसकी कितनी वैल्यूज खत्म होती जा रही है, मॉरल डिग्रेडेशन, कैसे नैतिक पतन होता जा रहा है। सोचिए जरा क्या कारण। तरक्की तो इस विज्ञान की खूब हो रही है, लेकिन दूसरी ओर और उसी का रिजल्ट है, उसी का रिजल्ट है क्या आज देख रहे हैं, यूक्रेन रशिया का युद्ध किस कारण है? पीछे अगर अच्छी तरह डीप सोचेंगे, एक ईगो है, एक अहंकार है, वही विकारी कोई ना कोई मिलेगा। सुपर पावर चाहता है, किसी तरीके में सुपर पावर बना रहा हूं, और दूसरा व्यक्ति छोटी मोटी बात में अगर करके कंप्रोमाइज टक्कर मारने का क्या फायदा। मैं दोनों ओर से कहूंगा, आज ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं उसमें बाबा ने कहा ताली तो बच्चे दो हाथ से बजती है। दोनों ओर से कहूंगा, मेरे राष्ट्र के अगर 5 आदमी भी हाथ जोड़ने से बचते हैं, कोई व्यक्ति अहंकार में आ गया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 5 बच जाएंगे। आज लाखों मारे गए हैं यूक्रेन में, लाखों पलायन कर गए हैं, सारा बर्बाद हो गया है, लेकिन ईगो मनुष्य उसे सोचता है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। नो। सोचिए, इसलिए किस कारण, ये इन्हीं चीजों की कमी के कारण ना, उधर हमास इजराइल, उधर क्या हुआ पड़ा है, सारा विश्व का हालत देखो। ये तो शुक्र है परमात्मा कैसे भी बुद्धि दे के भारत पाकिस्तान का भी छिड़ गया था, अगर ये तेज हो जाता इन चीजों का एंड बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, देश दोनों बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाता। मैं मानता हूं कि कुछ जनता की आवाज और सब कुछ देख के हमें करना भी पड़ता है, हमें पूरा अपना डिफेंस सिस्टम भी और कहीं जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन जहां तक हो सके जो भारत की गरिमा है, शांति प्रिय देश, शांति की शक्ति से अगर ठीक हो मामला तो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए इन चीजों को, हाँ, तरक्की भले हाईटेक और करो, भारत को ले जाओ टेक्निकल प्रोग्रेस की ओर, उस प्रगति की ओर, हाई टेकेड बना दो, लेकिन प्रश्न ये है, बड़ा सुंदर किसी शायर ने कहा, क्या इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, दिमागों में अंधेरे हैं सड़कों पे उजाले हैं, दिमागों में अंधेरे हैं सड़कों पे उजाले, सारी गली गली हमने लाइट कर दी, सब कुछ वाजिवा रोड्स बन गई, गलियां लाइटें हो गई, लेकिन दिमागों में तो अंधेरे आते जा रहे हैं, कितना अंधेरा छाता जा रहा है, क्या क्या कितने नीचे जाके, जैसे अपहरण क्या, हत्याएं क्या, मर्डर क्या, किडनैपिंग क्या, रेप केसेस क्या, कितना आंकड़ा जरा देखो तो सही, सेफ्टी खत्म हो गई बहनों की, सोचिए आप कितना पतन तक जा रहा है मनुष्य, आप सब रिपोर्ट पढ़ते रहते हैं, हर वर्ग की पढ़ते रहते हैं, किडनी बच्चों की बेच दी जाती है, किसी का कुछ किया जाता, क्या क्या आदमी सोच के हैरान हो जाता है, एक चरित्रवान व्यक्ति के इतना नीचे भी कोई उतर सकता है क्या? सोचिए, आप काफी सब इंजीनियर्स भी बैठे हैं, मेजॉरिटी कोई साइंटिस्ट भी आए हैं, हमारे एक साइंटिस्ट सीनियर हमारे जोन में भ्राता डॉक्टर अवतार सिंह जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट पद पे रहे हैं, वो हमारे इस विंग के बहुत एक्टिव भी थे, लेकिन अब कुछ महीने पहले ही वो एडवांस पार्टी में चले गए, तो वो बहुत रिसर्च करते रहते थे कि इस ज्ञान को हम कैसे विज्ञान से सिद्ध करें, और सचमुच उनका बहुत योगदान है। तो इंजीनियर्स मेजॉरिटी बैठे हैं, आप देखते हैं कितना प्रैक्टिकल करोड़ों रुपया अरबों रुपया डेवलपमेंट के लिए जाता है, प्रैक्टिकल कितना लगता है सब आप जानते हैं, सब ऐसे नहीं होते, बहुत चरित्रवान भी बैठे हैं, बहुत ऐसे भी हैं जिन्होंने जीवन में पूरा ऑनेस्टी का जीवन, लेकिन अधिकतर आप सब जानते हैं कितना जूनियर इंजीनियर से चीफ इंजीनियर तक कमीशन सिस्टम रखा हुआ है। मैंने 5 साल जॉब की 82 to 87, जिस दिन ज्वाइन किया मेरा बॉस, जहां ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे जब मिला, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा में था, उन्होंने कहा इंजीनियर साहब आप आ गए, मैं कह आ गया, ज्वाइन कर लिया 9 अप्रैल 1982 की बात है। कहते अच्छा इंजीनियर साहब एक बात ध्यान रखना, मैं कह क्या? कहते वो कमीशन सिस्टम। मैं कह कमीशन सिस्टम मतलब? कहते आपको कॉलेज में पढ़ा दिया होगा। मैं कह ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं था कमीशन सिस्टम का, क्या मतलब? कहते इंजीनियर साहब साथ साथ बात सुन लीजिए, अकेले अकेले नहीं खाना, मेरा हिस्सा जरूर रखना। फर्स्ट डे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, वो क्या शब्द बोल रहे हैं देखो, मुझे किसी की बैकग्राउंड तो पता कर लो, मैं तो 77 से जुड़ा हुआ हूं, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तब भी कैन यू बिलीव, वो पढ़ते पढ़ते उस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जब तक मेरा कोर्स पूरा हो, उसी इंस्टीट्यूट से 50 स्टूडेंट मेरी तरह ही राजयोगी बन गए, भगवान ने मेरे द्वारा निमित्त बना के उनको बनाया। अभी हमने इसी September 3 को सबको ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर पे बुलाया था, उनका एक राजयोगी ग्रुप बना हुआ है। तो अब आप, और वो सब के सब, ये है राष्ट्र को देन, मैं पूर्ण ईमानदार रहा हूं, वो सब के सब कोई डायरेक्टर कोई चीफ इंजीनियर कोई कुछ बन के, लेकिन एक पैसा रिश्वत का नहीं लिया उन्होंने। केवल उनकी क्या बात है, हमारे इंजीनियर विंग के भी हजारों मेंबर हैं। इंजीनियर विंग की मीटिंग जब होती है, नेशनल मीटिंग, चीफ इंजीनियर लेवल के लोग भी आते हैं। हम एक बार ये पूछा था, कहते हैं बड़ा प्रेशर होता है, बहुत वो होता है, अगर पैसे ना लो कमीशन तो क्या करते हो सब? मेजोरिटी ने बताया, एक आधे को बहुत कोई टॉर्चर करे अलग, कि भाई बिल्कुल क्लीन चल रहे हैं, हम एक पैसा रिश्वत का नहीं लेते हैं। ये है ना, आज ब्रह्म मुहूर्त आप सब आए हो, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जा रहे हो, क्यों ना एक शुभ संकल्प करके जाओ, किस चीज का? ऑनेस्टी का। ऑनेस्टी के लिए क्या कहते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उससे अच्छी कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे वहां पंजाब में कहावत है, रुखा सुखा खा के ठंडा पानी पी, ना वेख पराइया चोपड़ियां ना तरसावी जी। इसलिए बेईमानी का धन खुद को भी बर्बाद करेगा और संतान को भी बर्बाद करेगा, सबके संस्कार विघन ही विघन पैदा करेगा, इसलिए उसको आज संकल्प करके जाओ, पूर्ण ईमानदारी का जीवन व्यतीत करेंगे। जो ये शुभ संकल्प करते हैं, भगवान के सुंदर सभा में दोनों हाथ खड़े करो, फोटोग्राफर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोटो है धर्मराज को भेजने के लिए, बहुत बड़ी बात है, 100% सबके लिए ताली बजाओ। कुछ तो नया काम आपके साथ ही देखेंगे, परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन। बहुत तरीके हैं धन कमाने के, लेकिन हम गलत तरीका ना अपनाएं। भूखा कोई नहीं मरता, सत्य व्यक्ति हमने देखा हमारे वहां पानीपत रिफाइनरी में, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे मिस्टर एसएस सैनी, उनके लिए वो हमारे बहुत लेक्चर कराए रिफाइनरी में, तो उनके ड्राइवर्स बताते थे जी इतने ईमानदार हैं, मैनेजर्स के बच्चों का अगर बस छूट जाए जो टाउनशिप से जाता है तो गाड़ी भेज देंगे रिफाइनरी का, लेकिन इनके बेटे का अगर बस छूट जाए वो कहते गाड़ी नहीं भेजनी, वो दूसरी बस आएगी 11 बजे उस पे जाएगा, लेकिन वो गाड़ी नहीं भेजेंगे रिफाइनरी की गाड़ी, कहते शॉपिंग करने जाना है पानीपत रिफाइनरी की गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, डेली जाना है। ईमानदार था और उसका रिजल्ट मिला, उनको रिलायंस ले गई, वहां प्रेसिडेंट बना दिया जामनगर में। ईमानदारी का तोहफा मिलता जरूर है, कहीं ना मिले उसके पास तो बहुत ही मिलता है, उसके फूलों की वर्षा होती है। हो सकता है कुछ कष्ट सहन करने पड़े लेकिन उससे कितना कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए ये तरक्की ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें साइंस ने सब कुछ दिया, साइंस हैज प्रोवाइडेड हाउसेज, कितने सुंदर सुंदर, और ये किसी शहर में जाओ क्या बिल्डिंगें देखते ही रह जाते हैं। ये आप सब सिविल इंजीनियर की देन है ना, ताली बजाओ सिविल इंजीनियरिंग के लिए। बट साइंस हैज प्रोवाइडेड हाउसेज, बड़े सुंदर सुंदर आर्किटेक्चुरल व्यू के हाउसेज तो बनाए, बट नॉट स्वीट होम, घर बन गए परंतु अंदर घर में जो प्यार होना चाहिए, पति का मुख है नॉर्थ, उसका साउथ, किसी का दक्षिण, किसी का किधर, तो क्या करेंगे। साइंस हैज प्रोवाइडेड बेड्स बट नॉट साउंड स्लीप, साइंस हैज प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ मीन ऑफ एंटरटेनमेंट तो बट नॉट हैप्पी माइंड, मनुष्य के सब कुछ मिला लेकिन वो नहीं मिला, इसलिए उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए कुछ वैल्यूज हैं, उनको जीवन में अपनाएंगे तो जीवन बहुत महान बनेगा। उन जीवन में वैल्यूज को अपना के मैं आप इंजीनियर शब्द जो है, इंजीनियर शब्द में ही सारी वैल्यू है, उनको अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो जीवन बहुत महान बनेगा। सबसे पहले ई स्टैंड फॉर इफेक्टिवनेस, अपने काम में भी इफेक्टिव बने और अपने हर चीज में इफेक्टिवनेस तो बहुत जरूरी है, तब हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बनेगा। जितना हम इफेक्टिव होंगे, हाँ कोई कार्य करें पूरे प्रभावशाली ढंग से। फिर नेक्स्ट है एन स्टैंड फॉर न्यूनेस, समथिंग न्यू। देखो आप वहां से आए हो, कुछ नया मिला है, कितना उमंग उत्साह आपके जीवन में बढ़ गया है, तो इसलिए न्यूनेस जीवन में होनी चाहिए। नेक्स्ट लेटर है जी, जेनरेसिटी, हमारे जीवन में उदारता होनी चाहिए, उदारता। इन वैल्यूज को अपनाएंगे तो सचमुच एक सही इंजीनियर्स बनेंगे। इंजीनियर्स का मतलब नहीं है कुछ भी करते जाए, नहीं, उदार चित, उदारता से भी संपन्न हो, हमारे अंदर वो सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट है आई स्टैंड फॉर इंस्पायरिंग, इंट्रोवर्टनेस, मतलब हमारा जीवन हरेक के अंदर उत्साह भरने वाला, दूसरे के अंदर नई आशा पैदा कर दे, उमंग उत्साह भर दे, इसको कहते हैं इंस्पायरिंग जीवन। आप देख रहे हैं कितने भाई बहन, जितने आप 3 दिन से देख रहे हैं, कितना इंस्पायरिंग हरेक का वो जीवन, उनका पर्सनैलिटी, ऐसे ही हमारा होना चाहिए। और उसी के लिए इंट्रोवर्टनेस, थोड़ा सा बीच में मौन कभी कभी रखें, महीने में 1 दिन ही रखें, आप देखेंगे उससे कितना अच्छा आपकी तरक्की होती है, तो ये भी एक जीवन में बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगेन एन स्टैंड फॉर नोबिलिटी, सद्व्यवहार, हमारे जीवन में सद्व्यवहार होना चाहिए, हो सके तो इस शब्द को ग्रीटिंग वर्ड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज को अपना ग्रीटिंग वर्ड बना लें, जो भी मिले बड़े प्यार से क्या कहेंगे, ओम शांति, क्या कहेंगे। ये ओम शांति शब्द जो है ये बिल्कुल जीवन में, एक शहर में एक बहन ने पूरा मुहिम चालू किया कि आप जब भी फोन आए हेलो ना करके ओम शांति कहना, तो सब ने ऐसे ही करना शुरू किया, शहर में चैन मिनिस्टर ने खुद आके कहा एक बार चीफ गेस्ट में कि कई बार मैं कितना क्रोधित होता हूं लेकिन जैसे ही सुनता हूं ओम शांति एकदम कूल डाउन हो जाता हूं। तो नोबिलिटी, ये चीजें जीवन में आती रहें तो बहुत महान बन जाएंगे। नेक्स्ट अगेन ई स्टैंड फॉर एंथुजियज्म। हमारे जीवन में एंथुजियज्म, उमंग उत्साह, ये एक सबसे बड़ी चीज है। उमंग उत्साह है तो सब कुछ है, उमंग उत्साह नहीं है तो कुछ नहीं। हर वक्त उमंग रहना चाहिए, जीवन में कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, ऐसा उमंग होना चाहिए। तो उमंग जितना होगा हम बहुत महान बनेंगे। कभी भी निराशा निकट नहीं आनी चाहिए, सदा उमंग में रहना चाहिए। उसके लिए सदा खुश रहें और कितना भी कुछ बात हो प्रसन्न रहें, तब आप उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे। इसलिए वो भी एक बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट फिर यही आता है एनर्जेटिक, शक्तिशाली, हर वक्त शक्तिशाली बन के चले। हाँ, ऐसा ना लगे मैं क्या करूं, धन भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, परंतु अंदर मैं खाली फील कर रहा हूं, कुछ शक्ति नहीं है, मनोबल खत्म है, विल पावर खत्म हो गई है, जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एनर्जेटिक बने। लास्ट है आर स्टैंड फॉर रेस्पेक्ट। एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें। हाँ, ये नहीं कि मैं बॉस हूं तो छोटों को कुछ भी कहता चलूं, नहीं, हर एक को रेस्पेक्ट देना है। एक छोटा सा फ्यूज उड़ जाता है, सारा का सारा प्लांट रुक जाता है। एक छोटा सा व्यक्ति भी अगर आपसे वो हो गया तो ठीक नहीं रहेगा उसका रिजल्ट। इसलिए गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, वे एक बहुत जरूरी है। रेस्पेक्ट देने के लिए एक दूसरे की विशेषता देखें। मैं लास्ट में एक मंत्र देते हुए पूरा करता हूं, आप एक बात ध्यान रखें, अभी भी जब तक यहां है ये अभ्यास करना और जिंदगी भर का ये अभ्यास बना लेना। क्या पांच छह लोग आपके निकट होते हैं, मिस्टर मिसेज, बच्चे हैं और कोई पति पत्नी माता पिता या कोई बॉस या सबॉर्डिनेट, बस जिनका रोज वास्ता पड़ता है, उन्हें दिन में एक बार उनकी विशेषताओं को देखते हुए दिल से कहना है क्या आप बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ये डेली एक बार जरूर कहना है दिल से। जो कहते हैं कहेंगे वो हाथ खड़ा करो ऊंचा, वाह वेरी गुड, सबके लिए ताली बजाएं। आज ध्यान रखना, नाश्ते से पहले घर में एक फोन करना, जो भी आपके नियरेस्ट है, कहना कि मैंने आपसे ना एक बात करनी थी। क्या? कि आप ना बहुत अच्छे हैं। आप उसका रिजल्ट देखना। तो ये थोड़ा सा आपने जीवन में गिव रेस्पेक्ट। एक बात ध्यान रखना, ये केवल फॉर्मल ना हो, भाई लोग खासकर ध्यान रखना कि घर जाके कहें कि सुन तुम बहुत अच्छी हो, फटाफट चाय लाओ, नहीं, दिल से कहना सचमुच आप कितना काम कितना बढ़िया करती हो, सचमुच मेहनत करती हो, तेरे कारण ही तो मैं माउंट आबू जा पाया हूं, तेरा सहयोग है, ये रियली यू आर ग्रेट। ऐसे दिल से कहेंगे तो आप बहुत महान बन जाएंगे। एक दूसरे को भी मिलते रहो, आज भी कल भी कहते रहे वाह भाई आप सर बहुत ही अच्छे हैं। आप देखो कितना अच्छा आपका संस्कार बन जाएगा और उससे जीवन एक दूसरे की विशेषता देखने से आप स्वयं भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। पुनः इंजीनियर डे की खूब खूब बधाई हो। हमारे बीच में भ्राता मोहन सिंगल जी भी आए। थैंक यू, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भरत भूषण भाई जी का। आप अपने निर्मल और मधुर वाणी से, सुंदर शब्दों से हम सभी को लाभान्वित किया। थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच परम आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी पधारे हैं, हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से, आप उनको तिलक बैज और साशा के द्वारा उनका स्वागत करें, सम्मान करें। ब्रह्मा कुमारी बहने और आज हमारी जिंदगी में देखा जाए तो हर कोना किसी न किसी इंजीनियर की मेहनत और सोच का नतीजा है। चाहे सड़क के निर्माण, जिन पर हम सफर करते हैं, चाहे कारें जिन पर हम जाते हैं, लिफ्ट जो हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं, या फिर इंटरनेट जो अदृश्य नेटवर्क जो दुनिया को जोड़ता है, ऐसे हर जगह, मैं तो कहती हूँ हर क्षेत्र में, हर घर में, हर सिटी में, हर शहर में इंजीनियर्स मौजूद है, उपस्थित है। तो ऐसे इंजीनियर्स डे मनाने के लिए हमारे बीच बहुत ही उमंग उत्साह से पहुंचे हैं आदरणीय बानु भाई जी मधुर वाणी ग्रुप से। आप अपने सुंदर शब्दों से हम सभी का फिर से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे भ्राता भानु भाई जी।
ओम शांति। आज विशेष इंजीनियर्स डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और बधाइयों का सिलसिला चल ही रहा है। निश्चित रूप से आज परमपिता परमात्मा जो जगत नियंता है, इतने अभियंताओं को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं कि आप सभी नव सृष्टि की रचना में आप सबका सहयोग स्वयं परमात्मा आपका आह्वान कर रहा है। तो इंजीनियर्स डे की आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। आप सबके सम्मान में शब्द। इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां, इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां। अभियंताओं की मेहनत से शहर गांव गलियां, अभियंताओं की मेहनत से शहर गांव गलियां। इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां, इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां। खोज किए सुई से विमान तक चलती ये घड़ियां। तालियां बजती रहे सबका आपके अपने सम्मान में, ताल में ताल मिलाकर, ताकि वो ये स्पिरिचुअल एनर्जी आप सब अपने अंदर भर के देश की सेवा में काम आए। बांध पुल सड़के मकान, अनगिनत है अनुसंधान, भारत के उज्ज्वल भविष्य की आप ही तो है पहचान। ओ बांध पुल सड़के मकान, अनगिनत है अनुसंधान, भारत के उज्ज्वल भविष्य की आप ही तो है पहचान। आप से ही निर्माण होते जिसमें पलती दुनिया, आप से ही निर्माण होते जिसमें पलती दुनिया। अभियंताओं की मेहनत से ही शहर गांव गलियां, अभियंताओं की मेहनत से ही शहर गांव गलियां। आत्मा और परमात्मा शक्ति पर आओ मिलकर शोध करें, हम विकास की ओर चले हैं या विनाश की ओर बढ़ें।
हो आत्मशक्ति और परमात्मा शक्ति पर आओ मिलकर शोध करें हम विकास की ओर चले हैं या विनाश की ओर बढ़ें प्रभु पिता संग चढ़ते रहो सुख शांति की सीढ़ियां प्रभु पिता संग चढ़ते रहो सुख शांति की सीढ़ियां इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां अभियंताओं की मेहनत से ही शहर गांव गलियां विज्ञान में अध्यात्म हो अध्यात्म में विज्ञान हो विध्वंस से बच के चले नवयुग का निर्माण हो विज्ञान में अध्यात्म हो अध्यात्म में विज्ञान हो विध्वंस से बच के चले नवयुग का निर्माण हो आशाओं के दीप जले खुशियों की फुलझड़ियां आशाओं के दीप जले खुशियों की फुलझड़ियां अभियंताओं की मेहनत से ही शहर गांव गलियां अभियंताओं की मेहनत से ही शहर गांव गलियां इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां अभियंताओं की मेहनत से ही शहर गांव गलियां अभियंताओं की मेहनत से ही शहर गांव गलियां इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां इंजीनियर्स डे की सबको दिल से बधाइयां खोज किए सुई से विमान तक चलती ये घड़ियां खोज किए सुई से विमान तक चलती ये घड़ियां अभियंताओं की मेहनत से शहर गांव गलियां
थैंक यू
बहुत बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया आपने भानु भाई जी आपका गुलदस्ते से मोहन सिंगल भाई जी और कीर्ति भाई जी आपका सम्मान कर रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग आपने इतने दिल से हम सबको इंजीनियर्स डे पर बधाई दी थैंक यू अब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं आदरणीय कीर्ति भाई जी आप कीर्ति भाई जी को पहचानते होंगे आप विश्वकर्मा ग्रुप के कोऑर्डिनेटर हैं कारीगरों की सेवाएं आप करते हैं आप भगवान के छुए गुने अमूल्य रत्न है डायमंड है विश्वकर्मा जयंती जो हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है यह दिन विश्वकर्मा की जो देवताओं के शिल्पकार माना जाता है और रचनात्मकता तकनीकी कौशल और नवाचार का प्रतीक माना जाता है उनकी पूजा की जाती है उनकी जयंती के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय कीर्ति बाई जी को आप हमें आज अपने अमूल्य शब्दों से लाभान्वित करें कीर्ति बाई जी
ओम शांति सभी बोलेंगे ओम शांति तो हम बड़े ही भाग्यशाली है कि परमात्मा जो प्यार का सागर है वो परमात्मा के प्यार की किरणें और ये जो वरदान भूमि है जहां पर हम सभी विश्वकर्मा डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं तो मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आप सबके साथ विश्वकर्मा डे हम मना रहे हैं हम जानते हैं हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट विंग के जो पिलर है हमारे मोहन सिंगल भाई हमारे भरत भूषण भाई इन सबके लिए और हमारी जो विशेष अतिथि है संता योगिता जी और हमारी सुप्रिया बहन और हमारे इंजीनियर्स विंग या आर्किटेक्ट विंग्स के सारे जितने भी मेंबर है जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से किया, उन सब का सम्मान हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन मेरे साथ करेंगे। सभी दोनों हाथ मिलाओ, 1 2 3। ओम शांति। हम सभी जानते हैं 17 सितंबर को विश्वकर्मा डे, कई कंपनियों में और हर कारीगर इस विश्वकर्मा डे को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। विश्वकर्मा का जीवन सभी के लिए एक आदर्श है। अगर विश्वकर्मा के जीवन को अगर हम समझ ले तो मैं सोच रहा हूं हमारे जीवन के अंदर वो देवत्व आ जाएगा जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार काम कर रही है। हमने 7 वंडर बनाए, आज हम चंद्र पर चाह चुके हैं, मंगल पर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में मंगल नहीं है। तो इसलिए विश्वकर्मा एक आदर्श है। आज हम देखते हैं कि हम इंजीनियर्स डे मना रहे हैं, एक तरफ आप विश्व राय जी को खड़ा करिए और दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद को खड़ा करो, ये दोनों को अगर मिला दो तो वो विश्वकर्मा बनेगा। तो कहने का भाव एक अंतर जगत है, एक बाह्य जगत है। हम बाह्य जगत में प्रगति करते हैं और अंतर जगत, दोनों जगत में अगर प्रगति करते हैं उसका एक एग्जाम्पल है विश्वकर्मा डे। तो विश्वकर्मा डे हमें प्रेरणा देता है कि हम अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों जगत में हम अपने जीवन के अंदर सफलताएं हासिल करें। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा, रोते हुए आते सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। आज हम देखते हैं दुनिया में हम रोते हुए आए, लेकिन जाएंगे कैसे, हंसते हुए कब जाएंगे, जब इस संसार को हम कुछ दे के जाएंगे। मुझे मालूम है लता मंगेशकर को इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दूसरे जन्म में लता मंगेशकर बनना चाहते हैं, तो बोला बिल्कुल नहीं। तो कहा क्यों, तो बोला लता मंगेशकर का दर्द लता मंगेशकर जानती है। तो आज संगीत क्षेत्र में सबसे टॉप भारत रत्न है, लेकिन अंतर जगत में कुछ कमी रह गई, वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाई, वो परमात्मा का प्रेम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। तो इसलिए चाहिए कि अंतर जगत में भी हमें गुणों की जरूरत है। इसी तरह से आइंस्टाइन है, उसको पूछा गया कि दूसरे जन्म में आइंस्टाइन बनना चाहेंगे आप, उसने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो इन्वेंशन की, उसका जो प्रयोग किया गया नागासामी हिरोशिमा पर, तो उसका जो रिजल्ट आया उसको लगा कि ये मैंने जो इन्वेंशन की इसका रिजल्ट क्या है। तो उन्होंने कहा दूसरे जन्म में संत बनना चाहूंगा, कि बाह्य जगत में प्रगति के लेकिन अंतर जगत खाली रह गया। सिकंदर जब भी मरा तब दोनों हाथ बाहर करके गया कि मैं साथ में कुछ भी लेके नहीं जा। तो बाहर की प्रगति के साथ साथ आंतरिक प्रगति हम कैसे करें, ये हमें विश्वकर्मा के जीवन से सीखने को मिलता है। मुझे मालूम है बॉम्बे के अंदर एक व्यक्ति गणेश जी को बना रहा था, जब गणेश जी को बना रहा था तो बीड़ी फूंक रहा था, गणेश जी को चमका रहा था। आप देखिए वो धुएं से गणेश जी के आसपास, आपके पास भी धुआं लगे तो कैसा लगे। तो जो इतनी सुंदर मूर्तियों का निर्माण करता है लेकिन उसके जीवन के अंदर वो आध्यात्मिकता नहीं है, वो व्यसनों से ग्रस्त है। तो जहां एक कारीगर समाज के लिए एक विश्वकर्मा एक एग्जाम्पल है कि हम किसी भी क्षेत्र में सफलताएं हासिल करें लेकिन साथ साथ हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान भी हो। विश्वकर्मा जो है हमारी, जो यहां पर हम आए हैं तो यहां पर हमें विश्व के लिए कर्म करना परमात्मा ने सिखाया। मुझे मालूम है 93 के आसपास यहां पर एक महात्माओं की सभा भरी गई, उस सभा के अंदर हमारी प्रकाशमणि दादी जो हमारे बीच में नहीं है और उनका प्रेरणा स्तंभ आप देखेंगे, प्रकाश स्तंभ हमारे पीछे है। प्रकाशमणि दादी ने एक सेंटेंस सुनाया, मैंने बचपन से लेकर आज तक झूठ नहीं बोला। उसमें एक महामंडलेश्वर आए थे, उन्होंने दादी के पेट छुए, माता जी थोड़ा बहुत बोलते हैं। दादी ने कहा इतना प्रखंड, इतना सारा ज्ञान होने के बाद अगर हमारे जीवन में सत्यता नहीं आई तो क्या फायदा इस ज्ञान का। तो कहने का भाव है आज हम देखते हैं बड़े से बड़े इंजीनियर मिल जाएंगे लेकिन भारत का जो मूल मंत्र है सत्यमेव जयते, एक सत्यवादी आदमी ढूंढ के लाओ कितना मुश्किल है। तो कहने का है सत्यता को अपने जीवन में अपनाना और बाहर की दुनिया में भी प्रगति। तो हमारी दादी एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी इसके चीफ भी रही और आध्यात्मिक जगत में भी नंबर वन लिया। तो हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें दोनों जगत में श्रेष्ठता प्राप्त करनी है। हमारी गुलजार दादी है, उन्होंने इसमें सुनाया कि मैंने बचपन से लेकर आज तक झगड़ा नहीं किया, इतने सारे सभा में थे कोई नहीं उठे,
आज हम देखते हैं कहीं महात्मा गलत कार्य करते हैं, तो हमें ये देखना है कि हमें इस देश को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो हमें प्रेम को अपने अंदर भरना पड़ेगा। हमारी जानकी दादी ने सुनाया, मैंने बचपन से लेकर आज तक ठगी नहीं की, और आजकल आप देखते हैं कोई मानते नहीं, तो हमारी दादी का माइंड टेस्ट किया गया, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे जीवन में चाहिए कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रगति करें और बाह्य क्षेत्र, तो अंतर जगत भी हमारा श्रेष्ठ हो और बाह्य जगत भी श्रेष्ठ हो। उसका जो आधार स्तंभ है वो हमारे विश्वकर्मा जी है। विश्वकर्मा के हाथों में जो अलंकार दिखाए जाते हैं, ये अलंकार हमें प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार से हम आध्यात्मिक जगत और बाह्य जगत दोनों जगत में हम प्रगति करें। तो विश्वकर्मा यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर चार स्तंभ है, इस चार स्तंभ से हर व्यक्ति अपने को अपने अंदर देवत्व का निर्माण कर सकता है, और इसी चार स्तंभ के आधार से आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो। तो विश्वकर्मा के हाथ में एक शास्त्र दिखा जाए, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, तो हम समझते हैं हर धर्म की, स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये हमारा सनातन संस्कृति ऐसी है जो सभी धर्मों का समावेश कर सकता है अपने अंदर। इसलिए हमें देखेंगे हमारे हिंदू धर्म में कितने सारे शास्त्र बने, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम पक्के हिंदू भी है, क्योंकि परमात्मा हमें वो ज्ञान देता है, सभी ज्ञान का हम सम्मान करते हैं, देवी देवताओं का भी हम सम्मान करें। इसी तरह से हम इस्लाम धर्म है, उसने हमें सिखाया कि परमात्मा को अपने दिल में स्थान दे, हमारा सिर परमात्मा के आगे झुके और किसी के आगे न झुके। इसीलिए आज देखेंगे कई लोग अल्लाह के नाम पे एक रुपया मांगते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है कि परमात्मा से हम मांगे नहीं लेकिन अपनी क्षमता को इतना बढ़ा ले कि हमें मांगने की जरूरत पड़े। इसी तरह से आप देखें बुद्ध धर्म ने हमें शांति का संदेश दिया, इसी तरह से आप देखेंगे हमारे महावीर स्वामी ने हमें अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया, इसी तरह से आप देखेंगे गुरु नानक ने आनंद का संदेश दिया, जीसस क्राइस्ट ने प्रेम का संदेश दिया। तो ये सारे धर्मों को मिला के एक ऐसा धर्म बनाया जाए जिसको कहते हैं आदि सनातन संस्कृति। तो विश्वकर्मा के अंदर आप देखेंगे या हमारे कृष्ण के अंदर सातों गुणों का संगम है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ही है कि सारे गुण हमारे अंदर कहां से आएंगे, तो उसका आधार है मुरली। यहां पर परमात्मा ज्ञान की जो मुरली सुनाई जाती है, इससे आपके अंदर सारे गुण डेवलप होंगे। तो इस तरह से सभी धर्मों को मिलाकर एक ऐसा धर्म बनाया जाए जिसके अंदर हमारे अंदर सारे गुण आ जाए, तो ये सनातन संस्कृति है। इसी तरह से योग है, दूसरा हमारा सब्जेक्ट उसके हाथ में कमंडल, ये योग का प्रतीक है। आप सब जानते हैं, कहते हैं योगी कौन बन सकता है, तो कहा जो व्यक्ति 24 घंटा खाता रहता वो योगी नहीं बन सकता, जो बिल्कुल नहीं खाता वो भी योगी नहीं बन सकता, जो 24 घंटा काम करता रहेगा वो भी योगी नहीं बनेगा, जो बिल्कुल काम नहीं करता वो भी योगी नहीं बन सकता, जो व्यक्ति 24 घंटा सोता है वो भी योगी नहीं बन सकता, जो व्यक्ति बिल्कुल नहीं सोता वो भी योगी नहीं बन सकता। तो हमारे जीवन में बैलेंस चाहिए, तो जब हमारे जीवन में बैलेंस होगा तो हमारा शरीर हमको साथ देगा और हम अपने आध्यात्मिक जगत के अंदर, तो पहला स्तंभ हमारे शारीरिक स्थिरता है, दूसरा स्तंभ है साक्षी दृष्टा। जब योग के हम अनुभव करते हैं तो हमारे तीन प्रकार के संकल्प चलते हैं, एक है व्यर्थ नेगेटिव और तीसरे है सकारात्मक। आप देखेंगे दो जन ट्रेन में जा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि भाई आप कहां से हो, बोला मैं भी माउंट आबू से हूं, तो बोला अच्छा मैं भी माउंट आबू से हूं, बोला माउंट आबू में आप कहां रहते हो, बोला शांतिवन में, अच्छा बोला मैं भी शांतिवन में रहता हूं, तो बोला शांतिवन में आप कहां रहते हो, बोला मैं डायमंड हाउस में रहता हूं, बोला अच्छा मैं भी डायमंड हाउस में रहता हूं, बोला डायमंड हाउस में कौन से कमरे में रहते हो, बोला मैं एक नंबर में रहता हूं, बोला मैं भी एक नंबर में रहता हूं, तो बाजू में भाई बैठा था, बोला आप दोनों बुद्धू हो क्या, दोनों एक कमरे में रहते एक दूसरे को जानते नहीं है, तो बोला नहीं ट्रेन में जा रहे हैं ना हम भाग बैठे हैं लेकिन ट्रेन में टाइम पास कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे बिना मतलब के व्यर्थ संकल्पों में बहुत सारी एनर्जी जाती है। दूसरे जो संकल्प है वो है नेगेटिव। किसी ने कहते हैं भगवान ने वरदान दिया कहा तू जो मांगेगा बाजू वाले को डबल मिलेगा। उसने कहा हे भगवान मुझे एक बंगला दे दो, बाजू वाले के दो हो गए। उसने कहा भगवान मुझे एक बगीचा दे दो, बाजू वाले के दो हो गए। तो उसने ऐसे देखा कि बाजू वाले का तो डबल हो रहा है, तो उसने कहा कि भगवान को भी मजा चखा दो, इसको भी चखा दो। हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, क्यों, बाजू वाले की दोनों फूट जाए, कि भगवान मेरी एक टांग तोड़ दो, बाजू वाले की दोनों टूट जाए। तो आज हमारे नेगेटिव संकल्प के कारण ये जो दुनिया है नकारात्मक बन चुकी है। तो हमें योग के गहन अनुभव करने हो तो व्यर्थ और नेगेटिव को छोड़ना पड़ेगा और सकारात्मक संकल्प को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें, तो राजयोग की तीसरी अवस्था है कंट्रोलिंग पावर। जिनकी जरूरत नहीं है, यहां बैठे आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बिना मतलब के विचार आते यहां बैठे हो तो उसको कहो कि भाई अभी हम बाद में देखेंगे, अभी यहां बैठे तो यहां का पूरा आनंद ले। तो बिना मतलब के व्यर्थ और नेगेटिव को आप स्टॉप करेंगे तो आपके मन में शुभ संकल्प जो है भर जाएंगे, और ये शुभ संकल्प से मन भरपूर होगा, आप दुखी नहीं हुए। राजयोग की चौथी अवस्था है मन को अच्छे संकल्पों में एकाग्र करना, कि हम जब भी कोई अच्छे संकल्पों में मन को एकाग्र करेंगे तो उसका हम प्राप्ति का अनुभव करेंगे। आप देखिए बहुत जगह हम खड्डा खोद दे, उसकी जगह एक ही जगह खड्डा खोदेंगे तो वहां से पानी निकलेगा। तो इसी प्रकार से राजयोग की चौथी अवस्था है कि हम अपने मन के संकल्पों को एकाग्र करें। राजयोग की पांचवी अवस्था है हम परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में अनुभव करें। आप देखिए पहले के जो ऋषि मुनि होते थे 12 साल तक एक ही गुण का अभ्यास करते थे। एक ऋषि ने 12 साल तक अहिंसा का अभ्यास किया तो कहते उसके आसपास बिच्छू है, सांप है, शेर है, जो भी आते थे वो अहिंसक बन जाते थे। तो परमात्मा के गुणों को अनुभव करना ये राज्यों की पांचवी अवस्था है। आप सबने हमारे सतीश गुप्ता जी जो डॉक्टर थे जिन्होंने हार्ट के बारे में आप सबको बताया होगा कि किस प्रकार से प्रेम के संकल्प करने से हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाता है, तो इसी तरह से ये परमात्मा के गुणों को अनुभव करने के लिए ये योग बहुत जरूरी है। तो विश्वकर्मा के जीवन में ज्ञान भी था और योग भी था। और योग क्यों करना है वो अर्जुन पूछता है, योग योग करते हो आखिर योग कब तक करना? तो उसने कहा योगी अपने कर्म में कुशल होता है, जब तक आपके कर्म में कुशलता नहीं आती है तब तक आपको योग करना है। तो यहां पर हम देखेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इतना बड़ा आश्रम बना, यहां का हर व्यक्ति विश्वकर्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप है। यहां पर आप देखें चाय बनाने वाला चाय भी बनाता है लेकिन साथ साथ में आध्यात्मिकता में भी वो जो रूल्स है उसको भी फॉलो करता है। और आप देखेंगे चाहे कारपेंटर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर, हर डिपार्टमेंट से हमको ये शिक्षा मिलती है कि यहां का हर व्यक्ति परमात्मा को अपने दिल में बिठाया हुआ है और उस परमात्मा के लिए कार्य भी करता है लेकिन रोज मेडिटेशन भी करता है, अपने जीवन में मुरली सुनने का इसका भी महत्व देता है। तो आज हर व्यक्ति इतना बड़ा कार्य सुचारू रूप से हो रहा है उसका कारण है कि परमात्मा ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया। आज हम देखते हैं कोई स्वयं के लिए काम करता है स्वयं कर्मा है, कोई व्यक्ति परिवार के लिए काम करता है वो परिवार कर्मा है, कोई समाज के लिए काम करता है वो समाज कर्मा है, कोई व्यक्ति देश के लिए काम करता है वो देश कर्मा है, कोई राज्य के लिए काम करता है राज्य कर्म, लेकिन पूरे विश्व के लिए काम कैसे करना वो परमात्मा ज्ञान हमें सिखाता है। उसके आए चार स्तंभ है जिसके अंदर ज्ञान, योग जो मैंने बताया, तीसरा है धारणा और सेवा। कुछ गुणों की धारणा है हमारे जीवन को महान बना सकती है। एक छोटा सा एक गुण भी अगर आप अपनाएंगे उसके रिजल्ट कितने अच्छे मिलते हैं। एक राजपूत का लड़का था 5 साल का, वो अपने बेटे को समझा रहा था देख हम राजपूत घराने का, तू कल तुझे गुरुकुल जाना है, आज तक हमारे बाप दादा कभी रोए नहीं इसलिए रोना नहीं तू कभी, कल तुझे लेने आएंगे गुरु जी। और कहा देखो तेरी माँ चिल्लाएगी रोएगी लेकिन पीछे मुड़ के देखा तो भी तू हमारे कुल का नहीं, और चले जाना। वो 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो, 5 साल के बच्चे ने जब सुना बराबर ठीक है, फिर आए गुरुजी लेने और रोया नहीं। गुरुजी उसको ले गए, जैसे हमारे आश्रम इसी तरह बड़ा आश्रम था, बाहर गेट पे वो 5 साल के बच्चे को बोला आंख बंद करके बैठ मैं तुझे बुलाऊंगा। वो बैठा रहा 1 घंटा होगा, कहीं बच्चों ने कहा चलो गुरुजी भूल गए होंगे चलो चलो अंदर, बोला नहीं उसने आंख नहीं खोली। 1-2 घंटा हो गया, 3 घंटा है, कहीं बच्चों ने उसको जो है पानी डाला, किसी ने चुटियां भरी लेकिन उस बच्चे ने आंख नहीं खोली। 8 घंटा जब हो गया तो गुरुजी बाहर आया, कहे लड़के तू अंदर चल तेरे में कुछ दम है, अगर तू आंख खोल देता तो घर से तो गया लेकिन यहां से भी जाता, क्योंकि अनाथ आश्रम नहीं, यहां जो जिसके अंदर दृढ़ संकल्प का बल नहीं है वो यहां आके क्या करेगा। और जो गुरुजी उसको ले गए, कहीं हाथ धो रहा था गुरुजी ने पीछे से डंडा मारा, बोला ये क्या कर रहे हो, बोला ट्रेनिंग चालू है। तो वो बेचारा तंग हो गया, 1 साल तक कभी भी मार दे कभी कुछ कर रहा है। तो गुरुजी ने जो है कहा क्या करूं, लेकिन कहा राजपूत और टिका रहा। आखिर में उसने अपने मन को ऐसा ट्रेन किया कि गुरुजी कहीं भी मारे वो बचा लेता था, डांस करता था, कहीं से भी मारो, क्योंकि उसने 7-8 साल में मन को ट्रेन कर दिया। आखिर में क्या हुआ, वो सो रहा था गुरुजी ने डंडा मारा, बोले ये क्या कर रहे हो, बोला ट्रेनिंग चालू है। बोला जागते हुए मारते तो ठीक, अब सोते हुए भी सोने भी नहीं दोगे। धीरे धीरे उसने मन को ऐसा ट्रेन किया कि वो जो है सोते हुए भी अपने को बचाने लगा, इतना मन को ट्रेन किया। तो उसको संकल्प आया मेरा जो गुरुजी बूढ़ा है ये खुद मुझे ये जागृत करता है, एक डंडा उसको भी तो मार के देखू। उसका गुरुजी दूर बैठे थे, उसने कहा लड़के मारना मत, मैं तेरा डंडा सहन नहीं करता। तो उसको पता चला मेरे गुरुजी इतने जागृत है कि इतने दूर से मेरे संकल्प को कैच कर लिया। तो आज चाहिए कि हमारे जीवन में वो दृढ़ता की पावर नहीं है। अगर आप सब यहां आए हो, हमारे भाई साहब ने भी आप सबको एक दृढ़ संकल्प कराया, अगर आप सब सिर्फ ये जो ज्ञान योग धारणा सेवा, ये सुबह का जो मेडिटेशन और मुरली आप अपने स्थान पे जाके करेंगे ना, आप भी मास्टर विश्वकर्मा बन सकते हो। और ये विश्व को आज जरूरत है, स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे 100 कुमार मिले तो मैं विश्व को बदल दूंगा, लेकिन मैं कहता हूं आप इतने काफी है, ये पूरे विश्व को परिवर्तन, भगवान ने आपको चुन चुन के यहां लाया। तो कहते ना टूट गई है माला मोती, बिखर गए आप सब, बिखर गए, और हमारे मोहन सिंघल भाई के संकल्प से आप सब एकत्र हुए। तो आज जो सारे इंजीनियर साइंटिस्ट हमारे बीच में यहां आए हैं, आप सभी अगर ये संकल्प रहे दृढ़तापूर्वक कि हम इस परमात्मा ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो हम आंतरिक जगत में भी प्रकाश फैलाएंगे। जिसे भाई साहब ने कहा बाहर जगत में बहुत प्रकाश है, अंतर जगत में अंधेरा है। इस अंतर जगत में प्रकाश फैलाने का ये जो आधार स्तंभ है, ये जो ज्ञान और योग, ये दो पंख है, आप देखेंगे बहुत हल्के महसूस करेंगे, आपका कार्य भी श्रेष्ठ होगा। दूसरा है सेवा, कि हमारे जीवन में सेवाओं को भी महत्व है। भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, हम संसार से ले रहे हैं, तो सेवा, तो ये जो चार स्तंभ है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में देवत्व लाना चाहते हैं उसका आधार स्तंभ ये चार स्तंभ है। हम देखते हैं यहां पर मेरे सामने मोहन सिंघल भाई है, हमारे भारत भूषण भाई है, बहुत सारे महान व्यक्ति को मैंने देखा, लेकिन उसका आधार स्तंभ ये चार स्तंभ है। तो आप भी आज हमारे बीच में आए हो, तो मैं समझता आप सब भी आगे आते रहिए, और इसी तरह से हम सभी विश्वकर्मा डे, इंजीनियर डे, और इस भारत को नहीं पूरे विश्व को स्वर्ग बनाने का जो संकल्प लेके ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तो हम सभी मिलकर अपने जीवन में बैलेंस लाके इस दुनिया को बदलेंगे। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।
थैंक यू कीर्ति भाई जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों से अपने विचार व्यक्त किया। फूलों की खुशबू की तरह आपका जीवन दिव्य गुणों से महकता रहे, सूरज की तरह आपकी शक्तिशाली किरणों का प्रकाश सारे विश्व को रोशन करता रहे, चंद्रमा की चांदनी की तरह आपका जीवन हमेशा चमकता रहे, दीपक के उजाले की भांति आपके जीवन को खुशियों की रोशनी सदा रोशन करती रहे। यही इस शुभ अवसर पर इंजीनियर्स डे के दिन आप सब के लिए बहुत 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 दिल की दुआएं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, हैप्पी इंजीनियर्स डे वंस अगेन। मैं तो कहती हूँ इस सभा में उपस्थित सभी इंजीनियर्स एक बार अगर खड़े हो सकते हैं, चाहे सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, हम सभी इन सभी इंजीनियर्स को सैल्यूट करके हैप्पी इंजीनियर्स डे बोलेंगे। सभी सैल्यूट करें इन इंजीनियर्स को। सभी बैठिए, अभी कैंडल लाइटिंग दीप प्रज्वलन होगा। आज की वैश्विक जो चुनौतियां है, चैलेंजेस है, जैसे क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और सतत विकास, ऐसी समस्याओं को निपटने के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इंजीनियर्स को शोध, प्रयोग और नए विचारों को वास्तविक जीवन की दिशा में लागू करना होगा। भारतीय इंजीनियरों में ये क्षमता है कि वे किसी भी देश के इंजीनियर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके और नई दिशा दे सके। तो आज नेशनल इंजीनियर्स डे के मौके पर हम दीप प्रज्वलन करेंगे। आप सभी भी जो बैठे हैं, अपना टॉर्च की लाइट ऑन करके इस दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे। ये भाग्य जगाने वाला दीप है, भाग्य दीप है, कुलदीप है, जीवन देने वाला आशा दीप है, ज्ञान दीप है। इस दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर सुशोभित वक्तागणों का। आप प्लीज सामने आए दीप प्रज्वलन के लिए। और मधुबन के जो समर्पित भाई बहने, जो इंजीनियर्स हैं, अपनी अथक सेवाएं दिन रात यहाँ पर मुख्यालय में देते हैं और इस कॉन्फ्रेंस में भी आपने अपना सहयोग दिया है, उन सभी को भी मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मंच पर उपस्थित वक्तागण कुबलकर जी, पीयूष भाई, भरत भाई जी, नरेंद्र भाई जी, दिनेश भाई जी, प्रताप भाई जी, सुधीर भाई जी, सेल्वम भाई जी, गिरीश भाई जी, धनंजय भाई जी, भावेश भाई जी, अस्मिता बेन जी, भावना बेन जी और जो आमंत्रित इंजीनियर्स है वो सभी कृपया कैंडल लाइटिंग के लिए स्टेज पर आए। जो इंजीनियर्स अभी यहाँ पहुंचे हैं टॉर्च ऑन करके इस दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे।
ओम शांति। आप सभी को ज्ञात ही है कि इंजीनियर्स डे आज का दिन हम श्री विश्वेश्वरैया जी के स्मृति में ही मनाते हैं, तो वैसे तो हमारी इच्छा थी कि आप सभी आते, सब यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दीपक जलाते, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि ये कार्यक्रम के पश्चात आपको नाश्ते पर जाना है और उसके बाद आज का दिन आपका घूमने के लिए है, माउंट आबू जाने के लिए। इसलिए और अधिक समय न लेकर के चेयरपर्सन के से निवेदन रहेगा कि वह अपना वक्तव्य दें। उससे पहले सब यहाँ पर आते हुए कुछ सेकंड में पुष्प अर्पण करते हुए और फिर दीपक जलाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद।
सेंटर NIC दिल्ली से पधारे हैं। आप हमारे विशेष निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ भारत, आप अपने दिल के उद्गार हम सब के बीच प्रकट करेंगे। आदरणीय श्रीमती संयोगिता गुरुंग जी।
ओम शांति, ओम शांति।
मैं अनुरोध करूंगी सभी बैठे रहेंगे, बहुत जल्द ये कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, तब तक आप बैठे रहेंगे।
आदरणीय भारत भूषण जी, आदरणीय कृति भाई जी और आदरणीय मोहन भाई जी, परमात्मा ने मुझे इतनी महान आत्माओं के संग आज बैठने का मौका दिया। मैं भगवान का बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ। और आप सभी महान आत्माओं के संग मेरा आज संगम हो रहा है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं ब्रह्म कुमारी जी से अभी जुड़े हुए मुझे सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, लेकिन परमपिता भगवान ने मुझे इतनी बड़े स्टेज में मुझे एकदम से बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। आप सभी को इंजीनियर्स डे के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, और हम 17 सितंबर को भी विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं, उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बधाइयाँ। आज इंजीनियर्स डे है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने 28 साल इंजीनियरिंग में अभी अपना योगदान दे रही हूँ। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन से हूँ, लेकिन मुझे जीवन की इंजीनियरिंग यहाँ आके ही मुझे सीखने को मिली। मेरा असली परिचय, मैं अपने को एक आत्मा समझती हूँ। उससे पहले मैं अपने मौखिक उसमें अपने को एक काम करने वाली महिला और एक ऑफिस में किस तरह से स्ट्रेस लेके अपना 12-16 घंटे भी मैंने अपने कैरियर को दिया है। तो लेकिन मुझे यहाँ आके इतना सुकून, इतना अच्छा लगा बाबा के पास आके, तो मुझे ऐसे लगा 14 अगस्त 2023 को मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैं बाबा के संग जुड़ी हूँ। मेरा असली जो परिचय है, मैं एक सिर्फ एक आत्मा हूँ। तो आप सभी को इंजीनियर्स डे के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्या हमने आत्मिक इंजीनियरिंग सीखी है? ये हमें उनको सिखाना है। अगर हम जो 1.5 मिलियन इंजीनियर्स जो हम पैदा कर रहे हैं, उनको हम एक आत्मिक इंजीनियरिंग भी सुनाएं, तो हम यहीं पे एक स्वर्ग बसा सकते हैं। तो ये मेरी कामना है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके कि मैं एक इंजीनियर होके एक आत्मिक इंजीनियरिंग की एक मेरी अपनी नई यात्रा शुरू हुई है। और विश्वकर्मा दिवस में हम जो विश्वकर्मा दिवस में हम विश्व के निर्माता को, जो हमारे विश्व के असली निर्माता हैं, वो हमारे परमपिता परमेश्वर बाबा हैं, तो हम उनकी संगत में चल के हम एक नए विश्व का निर्माण करेंगे, जो कि हमारे अभी लौकिक उसमें हमारे मोदी जी का एक सपना है कि एक विकसित भारत 2047 तक हमें बनाना है। तो हम एक विकसित भारत विद आत्मिक इंजीनियरिंग के संग हम उसको बनाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच समयोगिता जी, बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत अच्छा मैसेज हम सबको दिया है। मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि आप आए और हम गॉडली गिफ्ट हमारे चेयरपर्सन को प्रदान करें, ईश्वरीय सौगात। इसके दौरान यहाँ जो इंजीनियर्स बैठे हैं, सिविल इंजीनियर्स कितने हाथ उठाए? मैं तो कहती हूँ सिविल इंजीनियर्स आर दोस हु बिल्ड द वर्ल्ड, थैंक यू। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो बैठे हैं, सो यू पावर द वर्ल्ड, गिव पावर टू द वर्ल्ड, गिव लाइट टू द वर्ल्ड। और मैकेनिकल इंजीनियर्स जो बैठे हैं, दे रन द वर्ल्ड। आईटी इंजीनियर्स जो बैठे हैं, We progress the world. Electronic engineers जो बैठे हैं, We gadgetize the world. और computer engineers जो बैठे हैं, We program the world. Once again इन सभी को करतल ध्वनि से इंजीनियर्स डे की बधाई देंगे, और हमारे मेहमान को हम ईश्वरीय सौगात प्रदान कर रहे हैं, परम आदरणीय मोहन सिंगल भाई साहब। अभी हमने देखा है कैसे इंजीनियर्स सिर्फ रास्ते का निर्माण ही नहीं लेकिन समाज का निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे इंजीनियर्स दिवस पर आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हमारे आदरणीय वक्तागण जो अपने अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, और इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में जो गुप्त रीति से और जो स्टेज के पीछे है, स्टेज के आगे है, साउंड कहिए, वीडियो कहिए, लाइट कहिए, या फिर स्टेज को संभालने वाले डाइनिंग इलेक्ट्रिकल कई डिपार्टमेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और मुख्य रीति से हम अपने परमपिता परमात्मा को फिर से थैंक यू धन्यवाद करते हैं। अभी हम सभी एक मिनट के लिए उस परमपिता परमात्मा की याद में स्मृति में बैठ के इस कार्यक्रम का समाप्त करेंगे। मैं तो कहूंगी ये समाप्ति नहीं है पर ये अपने जीवन के लिए एक नई शुरुआत है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। सो विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी कंटेंट कलरफुल मीनिंगफुल सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल लाइफ। ओम शांति। आप सभी को फीडबैक फॉर्म्स मिले हैं, वो कृपया भर के आप जमा कराएं।
विश्वकर्मा पर्व है सारे जहां को इस पे गर्व है।